द्वीप भरत क्षेत्र हुंडाव सर्पणी काल तत्संबंधी धर्मतीर्थ शासन नायक प्रथम जिनेन्द्र तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम जिनेन्द्र तीर्थंकर महावीर स्वामी के पर्यंत सभी जिनेन्द्रों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। त्रिलोक त्रिकाल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु परमेश्वर भगवंतों को नमस्कार। द्वादशांग शुक्र देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। नव देवता व्याख्यान माला में आचार्य परमेश्वरी का व्याख्यान अपन विभिन्न ग्रंथों से पढ़ रहे हैं। आयरीय भक्ति नाम का एक छोटा सा काव्य है, कुंदकुंद आचार्य द्वारा विरचित है। उसकी पहली और चौथी गाथा को देख लेते हैं। और गत दिवस अपन ने आचार्य शांति सागर महर्षि का स्मृति दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। सायंकाल ऐसा लग रहा था कि आज का दिन सफल हो गया, उनके चलचित्र भी अपने को मिल गया और उनका उपदेश भी मिल गया। और वैसे तारीख से देखो तो 18 सितंबर की तारीख थी उनकी संलेखना की सन 55 में, तो आज 18 सितंबर ही। प्रायः करके 19 वर्ष में तिथि और दिनांक समान होते हैं और 28 वर्ष में तारीख और वार समान होते हैं। एकदम वो 28 वर्ष वाला तो एकदम नियम से वैसे ही होता है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, फेर बदल नहीं होती। यानी आप ये समझ लो कि सन 2000 का कैलेंडर 2028 में वैसा का वैसे ही मिलेगा, किसी भी वर्ष का, उसमें 28 जोड़ दो आप तो फिर वो वही का वही हो जाता है। तो अभी तो सन 55 से यहाँ तक के कितना समय हुआ, वो 56 वर्ष जब हुए होंगे ना तब बिल्कुल वही 18 तारीख को ही वो वार पड़ा होगा जिस वार को उनकी संलेखना हुई थी। और 19 के पहाड़े से जाओगे तो फिर 19 के पहाड़े में 56 आता है क्या? तो अभी कौन सा मतलब कितना समय हो गया, 55 से 23 68 68 वर्ष हो गए। तो ये गाथाएं इस प्रकार है। देश कुल जाहि सुद्धा विशुद्ध मन वयन काय संजुत्ता तुम मम पाय पयोरुह मिहान मंगल मथुमे निच्छम। ये शब्द अपन ने कितनी बार पढ़ा है, देश कुल और जो जाति से सिद्ध होते हैं वही आचार्य होते हैं। ऊपर भी एक कथा आई थी धवला की और श्रुतावतार कथा में भी ये बात आई थी कि जब सुबुद्धि और नरवाहन मुनि दर्शन आचार्य महाराज श्री के पास महासेन आचार्य द्वारा प्रेषित किए जा रहे थे, तब उन्होंने देश कुल जाति की शुद्धि का ध्यान रख कर के उनको वहाँ भेजा था। तो ऐसे अनेक स्थानों पर अपने को ये कथन मिल रहा है देश कुल और जाति से शुद्ध। उनका देश यानी जहाँ उनका जन्म स्थान है वो स्थान भी शुद्ध, आर्यखंड का स्थान और अन्य भी कुछ विशेषताएं होती है, जहाँ सदाचार और साधुओं का विचरण होता है ऐसा स्थान। फिर कुल पिता का वंश, जाति माँ का वंश, दोनों संकर दोष से रहित हो, मिश्रण से रहित हो। और एक बात ध्यान में रखना कि अगर अपन धर्म और जाति को मिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी अपनी बुद्धि हो जाए, काल का ऐसा प्रभाव है कि अपन कई तर्क लगा देते हैं हर जगह, जहाँ वो तर्क नहीं बैठता वहाँ भी लगाने की कोशिश करते हैं, तो एक समस्या खड़ी होगी। समाधि तंत्र ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, जातिर देहाश्रिता दृष्टा। जाति जो होती है वो देहाश्रित होती है और धर्म आत्माश्रित होता है। तो कैसे समान हो सकते हैं दोनों? जाति से धर्म का संबंध कैसे बैठा सकते हो आप? क्या तिरेंज लोग सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते? क्या चांडाल जैन धर्म को नहीं अपना अंगीकार करता? महावीर स्वामी के काल में यमपाल चांडाल ने किया था कि नहीं जैन धर्म को अंगीकार? तो वो जाति से संबंध नहीं है धर्म का। किसी भी जाति का मनुष्य धर्म को अंगीकार कर सकता है अपनी सीमा तक, क्योंकि सबकी सीमाएं बताई गई है शास्त्र में, सबको सारे अधिकार नहीं दिए गए और किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। जितना जिसका अधिकार है उतना वो कर सकता है, लेकिन सारे अधिकार सबके पास नहीं। जैसे क्षुल्लक के पास खड़े होकर भोजन करने का अधिकार नहीं है। उपविश्य पाणी पुटे, एलक के लिए बताया कि बैठ करके पाणी पुट में आहार लेते हैं, तो फिर क्षुल्लक भी बैठ करके लेते हैं, तो जिसकी जितनी मर्यादा है उतना वो करेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? अभी एक आलेख आया था, 2 साल हो गया शायद, कि क्षुल्लक लोग जो होते हैं वो नीच कुल वाले ही होते हैं, ऐसा एक आलेख आया था और वो भी कोई विद्वान ने लिखा था। फिर आचार्य सुवेदी सागर महाराज को उसका प्रत्युत्तर देना पड़ा कि ये क्या क्या लगा रखा है आपने, यानी आप कुछ भी बोल दोगे क्या? आपको लेखनी मिल गई, जीववा मिल गई, तो आप क्या उसका कुछ भी प्रयोग करोगे? अब जो चंद्रप्रभ क्षुल्लक थे जिन्होंने रेवती रानी की परीक्षा ली थी, अमूर दृष्टि अंग की कथा में जो आता है ना वर्णन, तो उसमें क्या लिखा है कि वो विद्याधरों के राजा थे। फिर जो सिद्धार्थ क्षुल्लक थे जिन्होंने लव और कुश को अध्ययन कराया, वो कौन थे? तो काल का बड़ा विकट हुआ है, और जो लोग उसमें प्रभाव में आ जाते हैं उनको नुकसान होता है। अगर आप प्रभावित ना हो, हम तो कहते हैं कि आप हमसे बिल्कुल प्रभावित मत होइए, हम जो जिनवाणी बता रहे हैं वो भगवान का लेटर है, वो हम आपको पढ़ के सुनाए, उससे प्रभावित हो सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। हम तो सिर्फ यहाँ पर स्पीकर बन कर गए हैं, वक्ता तो वो है, अब स्पीकर भी ना कहें, हम तो साउंड बॉक्स हैं, इंग्लिश में उसको स्पीकर बोलते हैं इसलिए हमने स्पीकर बोला। वास्तव में देखा जाए तो स्पीकर तो वही है जिनेंद्र भगवान है। तो कल सवेरे एक घटना सुनी थी ना आपने कि सुमेरचंद दिवाकर जी ने नतमस्तक होकर क्या कहा था आचार्य श्री से, कि आपके लिए महावीर भगवान प्रमाण है, मेरे लिए आप प्रमाण है। और उनके परिवार वाले बोलते हैं कि हमारे लिए वो प्रमाण है, वो दादाजी बोलते हैं, सब उनके पूरे परिवार वाले उनको दादाजी बोलते हैं, सुमेर चंद दिवाकर जी को। तो हमारे लिए दादाजी के वचन प्रमाण है, दादाजी के लिए शांति सागर आचार्य महाराज प्रमाण है, आचार्य शांति सागर महाराज जी के लिए महावीर भगवान प्रमाण है, और सारे पूर्वाचार्यों को आचार्य श्री ने मान्य किया है। कभी उन्होंने काट छाट नहीं करी, कोई ऐसे भेदभाव नहीं किया, सभी आचार्यों को उन्होंने मान्य किया। पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी एक बार सन 90 में आए थे, गोटेगांव नाम का एक स्थान है, वहाँ पर पधारे थे और वहाँ पर पंचकल्याणक होना था, कार्यक्रम का बड़ा समय चल रहा था और आचार्य विद्यासागर महाराज ससंग विराजमान थे वहाँ। तो वो आए और वो दर्शन करना चाहते थे आचार्य जी के, तो ब्रह्मचारी राजेंद्र जी ने हमसे जुड़े हुए थे, एक ब्रह्मचारी राजेंद्र जी ने उनको रोका, वो बिल्कुल वयोवृद्ध हो गए थे उस समय, काफ़ी शरीर जर्जरित था उनका। बोले कि रुक जाओ दादाजी, अभी सामायिक के बाद दर्शन कर लेना या प्रवचन में आ जाना। बोले तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को अभी दर्शन करना है। बोले अभी वो सामायिक में है, आप प्रवचन के समय आ जाना। तब दिवाकर पंडित जी ने जो उत्तर दिया, उससे ब्रह्मचारी जी की धरती खिसक गई। उन्होंने कहा कि त्यागी जी, हमने जीवन भर प्रवचन किए हैं और जीवन भर प्रवचन सुने हैं, उस प्रवचन का सार जिस मुद्रा में है उसके दर्शन करने आ चाहते हैं। समझ में आया कुछ? तो फिर पूछा ब्रह्मचारी जी ने कि आपका परिचय? तब उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम सुमेर चंद्र दिवाकर पंडित जी। अरे पंडित जी क्षमा चाहते हैं, दरवाज़ा खोल कर दर्शन कराया, वो चले गए। कोई उनको प्रवचन नहीं सुनना था, कुछ नहीं, बस उस वो आचार्य शांति सागर महाराज से संस्कारित थे ना, क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी को ध्यान करते हुए उनके भक्तों ने देखा हुआ है बहुत बार, और उस मुद्रा को देखे बिना मन नहीं भरता उनके भक्तों का, इसलिए वो फिर संतुष्ट होकर गए। और जो बात उनको जमती नहीं थी उसको वो स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते थे कि ये बात गले नहीं उतर रही। देश कुल जाई सुद्धा, विशुद्ध मण वयन काय संजुत्ता, तुम मम पाय पयोरुह मिह मंगल मथु मेणिचम। जो देश कुल और जाति से शुद्ध है, जो विशुद्ध मन वचन काय से संयुक्त है, अर्थात जिनके मन वचन काय निर्मल है, ऐसे हे आचार्य परमेष्ठियों, ये स्वयं आचार्य लिख रहे हैं अन्य आचार्यों के लिए कि हे आचार्य परमेष्ठी भगवंतों, पूरे ढाई द्वीप में जितने भी आचार्य उन सबसे कह रहे हैं, तुम्म पाय पयोरुहम, आपके चरण कमल में मेरे लिए इस धरती पर मंगल मत हो, मंगलकारी हो। एक आचार्य अन्य समस्त आचार्यों से कह रहे हैं कि आपके चरण कमल मेरे लिए मंगलकारी हो। कितनी सुंदर बात है, जब अपन बड़ों को बड़ों की विनय करते हुए देखते हैं तो हृदय आह्लादित हो जाता है। वद समिधि गुत्ति जुत्ता, मुत्ति पहे ठावया पुणो अण्णे, अज्जावय गुण निले साहुगुणीणावि संजुत्ता। और कैसे हैं वे आचार्य परमेष्ठी? तो बोलते हैं कि जो व्रत समिति और गुप्ति, इन 13 प्रकार के चारित्र से युक्त है। वज व्रत 5, समितियाँ 5 और 3 गुप्तियाँ, इनको व्यवहार चारित्र कहते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ। तो इन 13 चारित्रों से जो युक्त हैं और पुण अन्ने मुत्ति पहे ठावया, और जो अन्य भव्य प्राणी हैं उनको मुक्ति मार्ग में स्थापित करते हैं, और कैसे आचार्य अध्यावय गुण निले, उपाध्याय के गुणों के आवास, यानी आचार्य सिर्फ 36 गुणों के धारी नहीं है, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय के गुणों के भी निलय है। और साहु गुणेण आविसंयुक्ता, साधु के गुणों से भी संयुक्त है, अर्थात आचार्य के पास 3 परमेष्ठियों के गुण होते हैं। उनके चरण कमल मेरे लिए मंगलकारी हो, और निचम 24 घंटे उनके चरण मेरे लिए मंगलकारी हो। कभी कभी गुरु की संलेखना हो जाती है और शिष्य यहाँ धरती पर जीवित रह जाते हैं, तब भी उनके चरण कमल शिष्य के हृदय से कभी अलग नहीं हो सकते, वो जीवन भर उनके हृदय में रहते हैं। शिष्य भले ही गुरु बन जाए लेकिन उनके गुरु उनके हृदय को छोड़ के जा नहीं सकते। गुरु भक्ति अगर आपको कहीं देखनी हो पुराणों में, तो आदिनाथ पुराण के दूसरे भाग में 43वां सर्ग जो है पर्व है, उसमें आप देखिएगा, आपको पढ़ करके ऐसा लगेगा कि क्या गुरु भक्ति है, अलौकिक। गुणभद्र आचार्य महाराज ने अपने गुरु जिनसेन आचार्य महाराज की जो भक्ति की है अद्भुत है। यानी उन्होंने ये लिखा कि मेरे गुरु इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने अनेक शिष्यों में से मुझे छांट करके ये कार्य सौंपा, तो मुझ में तो शक्ति ही नहीं है इस कार्य को करने की, इतना बड़ा कार्य 24 तीर्थंकरों की पूरी जीवनी लिखना मेरे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने ये लिखा कि अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे नहीं लिखना पड़ेगा कुछ भी, मेरे हृदय में बैठे मेरे गुरु ही मुझसे लिखवाएंगे। और फिर उन्हें ऐसी ऐसी बातें लिखी गुरु के बारे में, बोले कि जंगल में जहाँ से हाथी निकल करके जाते हैं वहाँ एक रास्ता सा बन जाता है, यहाँ दक्षिण में भी हाथी, जंगली हाथी मिलते हैं, और इधर शिखर जी के पास और छत्तीसगढ़ में कोरबा के पास और जशपुर नगर के पास जंगलों में हाथी हैं, और वो पूरा जब झुंड निकलता है तो अपने आप रास्ता बन जाता है। तो बोले मेरे गुरु रूपी हाथी ने रास्ता बना दिया है, तो पीछे से मुझे थोड़ी चलने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। इस तरह उन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर बातें की है कि आप देखना आचार्य के प्रति क्या भक्ति होती है शिष्य की, वो आपको वहाँ देखने मिलेगी। फिर लघु आचार्य भक्ति में लिखा है 36 गुण समी पंच विहाचार कर्ण संदरिसे शिष्याणुग कुशले धम्मा इरिये सदा वंदे। जो 36 गुणों से समग्र है, समग्र का अर्थ परिपूर्ण होता है, जो पंच प्रकार के पंच विहाचार करण संदरी से, पांच प्रकार के आचरण को करते भी हैं और संदर्शन भी कराते हैं, अर्थात जो पंचाचार करना चाहते हैं उनको दिखाते भी हैं कि कैसे किए जाते हैं पंचाचार, और शिष्यों के अनुग्रह में जो कुशल है, अर्थात शिष्यों को शिक्षा देने में जो कुशल है, कम शब्दों में अधिक शिक्षा देने वाले होते हैं आचार्य। बहुत वर्षों पूर्व लगभग सन 96 की बात है, आचार्य श्री गुजरात में थे और हमारे साथ ब्रह्मचारी जी थे, तो फिर वो जा रहे थे वहाँ गुजरात आचार्य श्री के पास, तो हमने उनको एक पत्र लिखा आचार्य श्री को, तो उन्होंने पत्र पढ़ा, उसमें हमने एक दोहा भी लिखा था, तो आचार्य श्री ने उस दोहे को भी कुछ शब्द आगे पीछे किए, तो उनकी राइटिंग भी उसमें है उस पत्र में। तो फिर उन्होंने ब्रह्मचारी जी के लिए कहा कि क्षुल्लक जी को ये संदेश देना, एक छोटा सा सूत्र उन्होंने परीक्षा मुख ग्रंथ से दिया जो आचार्य माणिक्य के नंदी विरचित है, उसमें एक सूत्र था, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष जातम आगमा भासम, तो उस सूत्र से हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि हम अलमारी की सब पुस्तकों को जिनवाणी मानते थे उस सूत्र से पहले, लेकिन उस सूत्र को पाकर समझ में आया कि सब जिनवाणी नहीं है, राग द्वेष और मोह से व्याप्त मनुष्य की रचना, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचन जातम आगमा भासम, वो आगम नहीं है, आगमा भास है। क्या मतलब हुआ? जैसे गर्मियों में जलाभास अपने को देखने को मिलता है, जब अपन मार्ग पर जाते हैं डामर के रोड पर, लगता है कि वहां सामने पानी भरा हुआ है, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको,
मृग जल बोलते हैं।
तो जब आगे जाते हैं तो पानी और आगे हो जाता है, वो मिलता ही नहीं पानी कभी, क्योंकि वो पानी होता ही नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो सूत्र था, इसका अर्थ था कि राग द्वेष और मोह से व्याप्त जो मनुष्य हैं, उनके वचनों से जिसकी रचना हुई है वो आगम नहीं है, आगमा भास है, उससे प्यास नहीं बुझने वाली जलाभास से। इसी प्रकार आगमाभास से आत्मा को तृप्ति नहीं मिलने वाली। तो फिर समझ में आया, फिर हमने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में देखा कि आगम के वक्ता कौन है, तो वहां लिखा था कि आगम के तीन वक्ता हैं, केवली भगवान, गणधर देव, और फिर अन्य जो आराती आचार्य होते हैं, ऐसे श्रुत केवले होते हैं जो 12 अंगों का सार, संक्षिप्त सार अपने शिष्यों को बता देते हैं। तो तीन ही वक्ता है आगम के, त्रयो वक्तारः सर्वज्ञ तीर्थकर इत्रो वा श्रुत केवली आरातीयश्च, ऐसी पंक्ति आई है सर्वार्थ सिद्धि में, प्रथम अध्याय के 20वें सूत्र की टीका में ये पंक्ति आती है, तत्वार सूत्र की व्याख्या है सर्वार्थ सिद्धि, तो उसमें ये पंक्ति मिलेगी आपको। और तब समझ में आया कि जो मूल श्रुत परंपरा है उसकी मर्यादा में जो भी वचन आएंगे उसको आगम कहेंगे, उसको आर्ष कहेंगे। आर्ष का अर्थ आप जानते हैं, संस्कृत व्याकरण में आता है आर्ष शब्द कैसे बना है, ऋषि प्रणीतम आर्षम, जो ऋषि द्वारा प्रणीत है अर्थात जिनेंद्र प्रणीत है उसको आर्ष कहते हैं। और जो तर्क कुतर्क करने वालों द्वारा अथवा नए नए चिंतन करने वालों द्वारा आगम की मर्यादा को छोड़कर बाहर रचना करने वालों का जो ग्रंथ होता है वो आगम न होकर आगमाभास होता है। इसलिए ये वचन ही आगम वचन ही ग्राह्य है। तो 36 गुण समग के पंचविहाचार करण संदरी से शिष्यानुग्रह, उसने शिष्यों का अनुग्रह करने में जो कुशल होते हैं, धम्मा इरिये सदा वंदे। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी कि उनके शिष्य ने गलती की लेकिन प्रायश्चित नहीं लिया। तो क्या होता है कि ये एक सभी संघों की एक पद्धति है और शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है कि शिष्य लोग आचार्य वंदना करते हैं और गुरु को नमन करते हैं। अब उसके उत्तर में गुरु क्या करते हैं, तो इस विषय में आज जो पद्धतियां हैं उस पर अपन ध्यान न दें। अगर अपन शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु, अगर शिष्य मुनिराज हैं तो उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, उनको प्रति नमस्कार करेंगे। वो नमोस्तु करते हैं और गुरु प्रति नमोस्तु करते हैं। तो एक शिष्य जिन्होंने प्रायश्चित नहीं लिया था उनको आचार्य शांति सागर महाराज ने प्रति नमोस्तु नहीं किया। तो प्रति नमोस्तु न करने से उनका स्थितिकरण हो गया और उन्होंने तुरंत आकर के प्रायश्चित लिया, शुद्धिकरण किया, फिर उनने आचार्य वंदना करके नमोस्तु किया तो आचार्य श्री ने प्रति नमोस्तु किया। कितनी बड़ी बात है। देखो, जो संसार के माया जाल में फंसा हुआ था, गुरु के निमित्त से उसको वैराग्य हुआ, संयम की भावना हुई और इतने बड़े आचार्य जिन्होंने उसको दलदल से निकाल कर परमेष्ठी के पद पर दीक्षित किया और अपरमेष्ठी से परमेष्ठी बना दिया, वो आचार्य उस जीव के परमेष्ठी बनने के उपरांत आशीर्वाद ना देकर प्रति नमोस्तु कर रहे हैं। कितनी बड़ी घटना है, सोचो। और मंगल कामना रूप आशीर्वाद तो उनका रहता ही है सब शिष्यों के प्रति, पर फिर नीतिसार और आचारसार ग्रंथों में बताया है कि गुरु किसको क्या आशीर्वाद दे, पूरी एक लंबी सूची है उसकी, उसका हमने संग्रह करके रखा है। वैसे अभी हम बहुत संक्षेप में वर्णन करने में लगे हुए हैं, वरना अगर एक एक परमेश्वरी का हम विस्तार करेंगे तो फिर उतना समय नहीं है कि ये पूरा हो जाए। अरहंत परमेश्वरी के वर्णन में 2 माह लग गए, फिर सिद्ध परमेश्वरी का वर्णन संक्षिप्त किया अपने इन गाथाओं के आधार से, अब आचार्य परमेश्वरी का वर्णन भी यहाँ इन गाथाओं की अपेक्षा तो समाप्ति की ओर है, लेकिन 36 गुण कौन से हैं ये भी एक सोचने की बात है। तो धम्माइरिये सदा वंदे, ऐसे धर्माचार्यों की हम सदा वंदना करते हैं। इस तरह आचार्य परमेष्ठी से संबंधित जो गाथाएं थी वो यहाँ पूर्ण हुई, लेकिन आचार्य परमेष्ठी से संबंधित कुछ अन्य जो जानकारियां हैं, जो 36 गुण जो है आचार्य के, उनके हमने ऐसे अर्घ्य बना के रखे हैं, तो वो 36 गुण हम केवल पढ़ के सुनाते हैं आपको। ओम ह्रूम आचार्यवते आचार्य परमेष्ठिने नमः। अगर किसी के पास कुछ चढ़ाने के साधन हो तो वो चढ़ा भी सकते हैं। ओम ह्रूम आचार्यवते आचार्य परमेष्ठिने नमः, स्वाहा बोलकर चढ़ा देना। ओम ह्रूम आधारवते आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम निर्यापकाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम निर्वापकाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम दोषवामकाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम दोषाभाषकाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम हानिलाभ दिग्दर्शकाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम व्यवहारवते आचार्य परमेष्ठिने नमः। ये 8 गुण प्रधान गुण हैं आचार्य के, और फिर इसके आगे के गुण देखिए आप, 10 कल्प होते हैं। ओम ह्रूम अचेल कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम अनुद्दिष्ट कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम शय्याग्रह मठाहार त्याग कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम दानशाला राजपिंड त्याग कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम कृतकर्म कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम व्रत संवास कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम ज्येष्ठ सद्गुण कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम प्रतिक्रमण कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम मास कल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम पर्याकल्पाय आचार्य परमेष्ठिने नमः। ये 10 कल्प हो गए, वो 8 प्रधान गुण थे और ये 10 कल्प हो गए तो 18 हो गए। अब कितने बचे? 18 बचे। तो वो 18 जो है उनमें 12 तप हैं और 6 आवश्यक है। ओम ह्रूम अनशन तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम अवमौदर्य तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम वृत्ति परिसंख्यान तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम रस परित्याग तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम विविक्त शय्यासन तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम कायक्लेश तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम प्रायश्चित्त तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम विनय तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम वैयावृत्त्य तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम स्वाध्याय तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम वित्सर्ग तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम ध्यान तपस्विने आचार्य परमेष्ठिने नमः। अब ये 12 तप हो गए, इसके बाद 6 आवश्यक है। ओम ह्रूम सामायिक कारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम चतुर्विंशति स्तव कारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम वंदनाकारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम प्रतिक्रमणकारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम प्रत्याख्यानकारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रूम कायोत्सर्गकारिणे आचार्य परमेष्ठिने नमः। नमो आयिर्याणम्। जैनम् जय सुशासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविनम्र करे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।